पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणे प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरोन् दीनकारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धामवृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वरकेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरज्ञापरः हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। दो रविवार पहले हम सब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मधुर उत्सव मनाया था। कौन सा था वो उत्सव? जगन्नाथ स्नान यात्रा। जैसे कि उस दिन चर्चा हुई थी, साल में एक बार और केवल एक बार श्री जगन्नाथ श्री बलभद्र श्री सुभद्रा देवी और सुदर्शन इनका अभिषेक होता है। वैसे प्रतिदिन उनके उत्सव मूर्ति मदन मोहन जी का अभिषेक होता है और दर्पण स्नान यात्रा के दिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान का अभिषेक होता है।
और पास में रहे कौन से कुएं से जल लाया जाता है आपको याद है? सोना कुआं। तो सोना कुआं नाम का कुआं वहां पे मंदिर के प्रांगण में है, तो वहां से जल लाया जाता है और भगवान का अभिषेक किया जाता है। बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु भक्त वहाँ पर एकत्र हो जाते हैं और स्नान यात्रा का महोत्सव न केवल मंदिर के प्रांगण में खड़े हुए भक्तों को दिखाई पड़ता है, परंतु जो मंदिर के बाहर हैं नीचे उन्हें भी दिखाई पड़ता है। जब ऐसे स्नान हो जाता है शीतल जल से, तो भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है उनको और वो एकांत स्थान में चले जाते हैं, रत्नवेदी नाम के स्थान में। वहां पर 15 दिन वो दर्शन नहीं देते हैं। वहां पर लक्ष्मी देवी उनकी सेवा करती हैं निजी रूप से, साथ साथ में उनके दैत पति सेवक उनके बहुत निकट से सेवा करते हैं। केवल इन 15 दिनों में वो ऐसी सेवा करते हैं। साधारण जितने भी अन्य सेवाएं होती हैं जगन्नाथ मंदिर में 350 दिन के लिए, वो अब इन 15 दिनों में नहीं होते हैं। भगवान जगन्नाथ के दिव्य शरीर पे जो रंग है वो थोड़ा एक साल में हल्का सा हो जाता है, इसलिए दोबारा भगवान के शरीर को रंगने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये स्नान यात्रा का महोत्सव आयोजित किया जाता है। पानी से अभिषेक करने के बाद जितना भी रंग है वो धुल जाता है और इसलिए दोबारा नया रंग भगवान के शरीर के ऊपर डालने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं 15 दिनों के लिए। जब ऐसे बीमार हो जाते हैं भगवान, तो उन्हें तरह तरह के औषधियाँ, फलों के रस आदि दिए जाते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो जाए। ये बहुत विशेष समय है, इसे अनवसर कहते हैं। यहाँ पे भगवान दर्शन नहीं देते हैं, जैसे कि यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं यानी दूसरे तात्पर्य में कहते हैं कि इतने दिन भगवान का दर्शन करने की आदत सबको हो जाती है। सारे जगन्नाथपुरी के निवासी प्रतिदिन प्रातः काल में या दिन में कभी आके भगवान जगन्नाथ के सुंदर रूप का दर्शन करने के आदि हो जाते हैं। और जब भगवान 15 दिनों तक ऐसे दर्शन नहीं देते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही असहनीय पीड़ा हो जाती है। पीड़ा किस चीज की होती है और कब होती है? जब हमें प्रेम होता है तब। भगवान से प्रेम न हो और भगवान का दर्शन अनेक दिनों से न हो तो हो सकता है कोई पीड़ा न हो, परंतु जहां भगवान के प्रति प्रेम हृदय में है और प्रतिदिन हम भगवान का दर्शन करने के आदि हैं और भगवान का दर्शन नहीं मिल पाता है, तो ये बहुत बड़े दुख की बात हो जाती है भक्तों के लिए। जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर निवास करते थे तो इस समय पर उन्हें भी ऐसे अत्यंत पीड़ा होती थी भगवान जगन्नाथ का दर्शन न होने के कारण। इसलिए वो पास में आलालनाथ नाम के स्थान में जाते थे। वहाँ पे रहकर जब 15 दिन का समय बीत जाता था तब वो लौट के आ जाते थे। तो खैर ऐसे 15 दिन बीत जाते हैं स्नान यात्रा में, दर्शन नहीं होते हैं भगवान के। इसलिए आप देखें कि हमारे मंदिर में भी जहाँ भगवान जगन्नाथ के विग्रह हैं हम दर्शन नहीं ले पाते हैं। भगवान थोड़े अभी तक ठीक हुए नहीं हैं, अब 2 दिन में हो जाएंगे ठीक। तो जब भगवान के शरीर का चित्रण होता है, चित्रित हो जाते हैं, रंग जाते हैं भगवान, तो फिर दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु दर्शन देने के पहले एक बहुत विशेष उत्सव होता है, बल्कि दर्शन का ही उत्सव है, जिसे नेत्रोत्सव कहते हैं। इसके बाद वाले दिन फिर रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। अब ये कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़। ये आषाढ़ का आज कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है? अमावस्या है, कल प्रतिपदा है, और परसों दिन द्वितीया तिथि है शुक्ल पक्ष की। तो द्वितीया आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। उसके पहले वाले दिन अर्थात आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा पे अर्थात कल के दिन ये नेत्रोत्सव मनाया जाता है। नेत्रोत्सव का अर्थ है नेत्रों के लिए उत्सव, हमारे नेत्रों के लिए उत्सव। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान जगन्नाथ का सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो हमारे लिए, हमारे आँखों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव बन जाता है। उत्सव अर्थात बहुत ही आनंद का समय, उत्सव जिसका पालन करके हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। वैसे भौतिक उत्सव भी होते हैं और आध्यात्मिक उत्सव भी होते हैं। भौतिक उत्सवों को तो लोग मनाते ही मनाते हैं, जैसे अपना कोई जन्मदिन मनाते हैं, कोई और कुछ उत्सव मनाते हैं, परंतु इसमें तथा कथित सुख या आनंद ही मिलता है, सच्चा आनंद नहीं मिलता है। सच्चा आनंद तो केवल भगवान की सेवा में मिल सकता है। इसलिए जो आध्यात्मिक उत्सव होते हैं उनको अवश्य हमें मनाना चाहिए। जो व्यक्ति सुख चाहता है, आनंद चाहता है, उसे ऐसे भगवान के महोत्सवों को निश्चित मनाना चाहिए। तो जब ऐसे हम उत्सव मनाते हैं तो हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो ये है नेत्रोत्सव, क्योंकि हमारी आंखें श्रीमद् भागवतम के अनुसार केवल भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करने के लिए बनाए गए हैं, और किसी चीज का दर्शन करने के लिए नहीं। इसलिए हम भक्ति पथ में अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हमारे आंखों को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं कि वो केवल भगवान के रूप को देखने में ही आनंद लेने का अनुभव कर लें। तो जैसे जैसे हम भक्ति के साधन करते हैं, श्रवण कीर्तन की इत्यादि, तो धीरे धीरे से भगवान के प्रति हमारे हृदय में आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ये नेत्रोत्सव बहुत प्रसिद्ध उत्सव है, क्योंकि इस दिन पे भगवान पहली बार स्नान यात्रा के बाद भक्तों को दर्शन देते हैं। बड़े ही आतुरता से भक्त लोग इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, क्योंकि 15 दिन वो दर्शन नहीं कर पाए और अब भगवान जगन्नाथ दर्शन देंगे तो बहुत आतुरता से राह देखते हैं, और बड़ी संख्या में वहां पर लोग आते हैं। ऐसे बताया जाता है कि जो इस समय भगवान का दर्शन करता है, न केवल स्नान यात्रा के समय परंतु नेत्रोत्सव के समय भी, उसके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण बात कहने की ये है कि हम भक्ति हमारे पापों को नष्ट करने के लिए नहीं करते हैं, हम भक्ति करते हैं भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए। पाप तो अपने आप ही नष्ट हो ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। तो भक्त लोग आते हैं और अपने आंखों के लिए एक उत्सव हो जाता है, भगवान का सुंदर रूप देख के। नेत्रोत्सव को और एक भी अर्थ हो सकता है कि भगवान के नेत्रों के लिए ये उत्सव है, क्योंकि अब वो 15 दिन के बाद अपने भक्तों को देख पा रहे हैं। देखिए, जितना आतुर भक्त होते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान भी कोई कम आतुर नहीं होते हैं भक्तों का दर्शन करने के लिए। भगवान विराजमान है, देखिए खड़े हैं, कितने धीरज रख के खड़े हैं। हम कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी कभी आते भी हैं तो ध्यान मोबाइल फोन पर रहता है, फिर भी भगवान को शिकायत नहीं करते, खड़े रहते हैं। हम यदि किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते व्यक्ति अपने मोबाइल फोन देख रहा है, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि भाई मेरे साथ बात कर रहे हो, मोबाइल फोन छोड़ो, मुझसे बात कर लो। तो भगवान के सामने भी लोग आते हैं अपना मोबाइल फोन खोल के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मंदिर में बैठ के भी, फिर भी भगवान शांति से सहन कर लेते हैं। आके न जाने हम क्या क्या और बात करते रहते हैं, मंदिर में खड़े होकर तरह तरह की बातें भी करते हैं, प्रज्वल भी करते हैं, कभी कभी प्रवचन में सो भी जाते हैं, भगवान सब देख रहे होते हैं, फिर भी शांत रहते हैं, कितना धीरज है। तो भगवान यहाँ पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो दर्शन देना चाहते हैं और साथ साथ वो भक्तों को देखना भी चाहते हैं। इसलिए मंदिर आने का जो उद्देश्य हमारे लिए है वो केवल ये नहीं है कि हम भगवान का दर्शन करें, परंतु हम इसलिए भी आते हैं ताकि भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति पाठ आदि करके हम भगवान को कहें कि हे प्रभु, आपके सामने आपका दास हाजिर है, कृपया आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखिए इस बद्ध जीव के ऊपर। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जाता है, कहीं हाजिरी देनी पड़ती है उसे, तो यहां भी हम आते हैं भगवान को हाजिरी देने के लिए, परंतु ये एक औपचारिकता नहीं है। यूं ही बस नाम के लिए आते हैं, हाजिरी देकर जाते हैं, ऐसे नहीं है। भले उतना भी करें तो बड़ी बात है, परंतु जब आते हैं तो भक्ति भाव से आते हैं ताकि भगवान भी संतुष्ट हो जाएं। देखिए, यदि भगवान यहां पर विराजमान हैं और हैं और कोई भक्त उनका दर्शन करने आए नहीं, तो भगवान को अच्छा लगेगा? अरे भगवान कहेंगे, मैं तो इतनी दूर से वैकुंठ जगत से आया हूँ, गोलोक वृंदावन से आया हूँ, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई मेरा दर्शन करने के लिए नहीं आ रहा है, तो भगवान तो प्रसन्न होंगे नहीं। तो खैर, इसलिए भगवान भी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान के नेत्रों के लिए भी एक सुंदर दृश्य होता है जब उनके प्रेमी श्रद्धालु भक्त उनके सामने बड़े आतुरता से एकत्र हुए होते हैं उनका दर्शन करने के लिए। तो भक्तों के लिए और भगवान के लिए ये नेत्रोत्सव है। और एक बात ये है कि जब विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब विग्रह की स्थापना होती है, तो अनेक विधियां होती हैं पंचरात्रि की शास्त्रों के अनुसार, अर्चना विधि के अनुसार। उनमें से एक है जिसको नेत्रोन्मीलनम कहते हैं, जब भगवान के आंखों को खोला जाता है। वैसे इसके पहले पट्टियों से बांध लिया जाता है और उस समय बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किए जाते हैं और फिर ये पट्टी खोली जाती है और फिर भगवान के नेत्रों का दर्शन पहली बार होता है, भगवान की आंख खुल जाते हैं। इसको नेत्रोन्मीलनम कहते हैं, नेत्र उन्मीलनम। तो क्योंकि यहाँ पे साल में एक बार अंगराग होता है, भगवान को नया रंग दिया जाता है, तो दर्शन करने देने के पहले, नेत्रोत्सव के पहले प्रातः काल में ही ये नेत्र उन्मीलनम विधि भी की जाती है। इसमें क्या होता है, पहले कोई तुलसी के टहनी से उसको शहद या मद में बुझो, उसको डुबा के फिर भगवान के दाहिने कान को स्पर्श किया जाता है, दाहिने आंख को स्पर्श किया जाता है, और फिर तुलसी के टहनी से को घी में डुबोकर फिर भगवान के बाएं आंख का स्पर्श किया जाता है, और इस समय तरह तरह के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। फिर काजल लेकर भगवान के निचले पलकों के किनारों पर काजल लगाया जाता है, और इस तरह से फिर भगवान की आंखें खुल जाती हैं। इसके पहले भगवान की आंखों का रंग लगाया जाता है, और फिर ये सब किया जाता है। उसके बाद अब जब भगवान की आंखें खुल गई हैं, अर्थात भगवान अब दर्शन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आरती होती है, और आरती के समय सारे श्रद्धालु भक्त भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो ये है नेत्रोत्सव, जगन्नाथपुरी में कल मनाया जाएगा, आने वाले प्रतिपदा कल है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी इस उत्सव को बड़े आनंद से मनाते थे, और आज का जो श्लोक है उसमें यही बताया गया है। अनुवाद इस प्रकार से है कि अगले दिन नेत्रोत्सव मनाया गया, यह महोत्सव भक्तों के प्राणों के समान था। प्राणों के समान क्यों था? क्योंकि 15 दिन जो वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए थे, अब जब दर्शन कर पाए थे ऐसे लग रहा था मानो उनके शरीर में प्राण वायु फिर से आ गई। भक्तों के लिए भगवान ही प्राण धन होते हैं। जिस प्रकार से एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए अपना धन ही प्राण धन होता है, प्राण के समान होता है, तो भक्तों के लिए भगवान प्राण धन होते हैं। इसलिए जो अच्छे भक्त होते हैं वो सबसे धनी होते हैं, भले भौतिक दृष्टि से वो गरीब हो या धनी हो, परंतु उसके पास यदि भगवान है, यदि उस व्यक्ति ने भगवान को अपना धन मान लिया है, तो वो सबसे धनवान व्यक्ति हो जाता है। परंतु कोई यदि धनवान व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों रुपए है, परंतु उसने केवल धन को ही धन मान लिया है, तो फिर वो आध्यात्मिक दृष्टि से गरीब माना जाता है, दीनहीन माना जाता है। इसलिए यहां सब जो भी बैठे हैं सब बड़े धनी हैं, धनवान हैं। आप ये मत सोचिए कि अरे मेरे बैंक में तो इतने पैसे नहीं हैं तो मुझे क्यों धनी बुला रहे हैं ये। आप वास्तव में धनवान हैं, क्योंकि यहां पर जो भी आते हैं उन्होंने भगवान को अपना धन, अपना प्राण धन बना लिया है। बस इस भावना को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो खैर, अब यहां कृष्णदास कविराज वर्णन करते हैं कि कैसे नेत्रोत्सव को मनाया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो आइए थोड़े श्लोकों का पठन करते हैं चैतन्य चरितामृत से। पक्ष दिन दुखी लोक प्रभुर अदर्शने, दर्शन कोरिया लोक सुख पाइला मने। पक्ष दिन अर्थात 15 दिन के बाद दुखी लोक, अनेक लोग जो दुखी थे, क्यों दुखी थे? प्रभुर अदर्शने, प्रभु के दर्शन न पाने के कारण दुखी थे जो लोग 15 दिन के बाद, दर्शन कुरिया लोक सुख पाइलो मने, तो फिर भगवान का दर्शन पाके अब सुखी हो गए। ये वास्तविक सुख है, सच्चा आनंद है। महाप्रभु सुखे लोना सब भक्त गण, जगन्नाथ दर्शने कोरिला गमन। तो बड़े हर्ष उल्लास के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु जो भी 15 दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे इस सुंदर उत्सव का, वो अपने भक्तों को साथ में लेकर गए और जगन्नाथ मंदिर में चले गए दर्शन हेतु। और उनके साथ में उनके भक्त थे। आगे चले काशीश्वर और पीछे चले गोविंद, और आसपास पे उनके सारे भक्त थे, ताकि श्री चैतन्य महाप्रभु को भीड़ के कारण कोई असुविधा न हो। तो परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती इत्यादि उनके आगे थे, स्वरूप दामोदर और अद्वैत आचार्य उनके बगल में थे, और बड़े आतुरता से ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ के मंदिर में प्रविष्ट हुए। पाछे पाछे चोली जाही आर भक्त गण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। पाछे पाछे चली मतलब पीछे चलते चलते सारे भक्तगण गए जगन्नाथ भवन में गए, और किस भावना से गए? उत्कंठाते गेला सब, उत्कंठा ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है हमारे लिए। उत्कंठा अर्थात आतुरता, बहुत तीव्र इच्छा। भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि जब व्यक्ति बहुत ऊंचे स्तर को प्राप्त हो जाता है, विशेष करके भाव भक्ति के स्तर में, तो उसके अंदर एक गुण जो आ जाता है अनेक गुणों में, वो है समुत्कंठा, सम्यक उत्कंठा। भगवान को देखने की, भगवान का दर्शन करने की परिपूर्ण लालसा, इसको उत्कंठा कहते हैं। भक्ति मार्ग में यही एक उपाय है भगवान को प्राप्त करने के लिए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि भगवान को यदि प्राप्त करना होगा तो हमारे हृदय में तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो उत्कंठाते गेला सब, तो सारे भक्त लोग उनका पीछा करते करते चले गए। दर्शन लोभे ते कोरी मर्यादा लंघन, भोग मंडपे जाना कोरे श्री मुख दर्शन। तो भगवान को देखने के उत्कंठा या आतुरता के कारण उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। क्या मर्यादा? वैसे बताया जाता है, एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में देते हैं कि जहाँ पे भगवान को भोग चढ़ाया जाता है तो वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, परंतु भक्तों की इतनी लालसा थी, इतनी तीव्र इच्छा थी भगवान का दर्शन करने के लिए, जितने भी विधि निषेध थे उनका सख्ती से पालन न करके वो सीधे भगवान का दर्शन करने के लिए अंदर चले गए। हम नकल नहीं कर सकते हैं, इस बहाने ये बहाना बनाकर कि हम देखिए कितना उत्कंठित हैं और हम नियमों को तोड़ के अंदर चले जाएं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। परंतु अंतःकरण में, हमारे हृदय में इस भावना का अनुशीलन करना चाहिए। क्रमशः आंतरिक प्रगति इस भाव की करानी चाहिए, न कि बाह्य दृष्टि से हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की नकल करें। फिर चैतन्य महाप्रभु की दशा कैसी थी? कविराज गोस्वामी कहते हैं, त्रिषार्त प्रभुर नेत्र भ्रमर युगल, गाढ़ तृष्णाए पिए कृष्णेर वदन कमल। त्रिषार्त, त्रिषा आर्त, जो बहुत प्यास से पीड़ित थे। क्या पीड़ित था चैतन्य महाप्रभु की, क्या पीड़ित थी उनकी आंखें? त्रिषार्त प्रभुर नेत्र, उनकी आंखें बहुत प्यास से पीड़ित थी, आंखें बहुत तरस रही थी भगवान का दर्शन करने के लिए। भ्रमर युगल, और उनकी आंखें ऐसे दो भ्रमर की तरह बन गई। भ्रमर अर्थात भौंरे, जो भौंरे होते हैं उनको, उन्हें मधु या शहद बहुत पसंद है, तो ऐसे ऐसे स्थान में मंडराते रहते हैं जहां उन्हें ये अमृत या मधु मिल सके। तो चैतन्य महाप्रभु के दो आंखें बड़े हो गईं और वो भंवरों के समान हो गईं। और वो किस तरह के शहद या मधु को चाहते थे? भगवान जगन्नाथ के सुंदर मुखारविंद के मधु का दर्शन करना चाहते थे, पान करना चाहते थे। गाढ़ तृष्णाएं पिए कृष्णेर वदन कमल। तो उन्होंने क्या कर लिया, उनकी गाढ़ तृष्णा बहुत तीव्र प्यास को उन्होंने बुझाया। कैसे बुझाया? उन्होंने आंखों से भगवान जगन्नाथ कृष्णेर वदन कमल, उनके सुंदर मुखारविंद का दर्शन किया। अमृत जैसे उनका जो मुखारविंद है उसका दर्शन उन्होंने उसको पिया अपनी आंखों के माध्यम से। बहुत ही काव्यात्मक दृष्टि से कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। हमें भी कैसे भगवान का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, न केवल आके बस औपचारिकता के लिए भगवान को देखें और चले जाएं, परंतु भक्ति का सार है भाव, भक्ति का सार है हृदय। जो भी हम भगवान की सेवा में करते हैं हृदय से करना चाहिए। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रफुल्ल कमल जिनी नयन युगल, नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल। तो नयन युगल, भगवान जगन्नाथ के दो नयन, दो आंखें थी, वो कैसे थी? प्रफुल्ल कमल, खिले हुए कमल पुष्पों के समान थी भगवान जगन्नाथ के नेत्र। ये दर्शन कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। नीलमणि दर्पण कांति गंड झलमल, और उनका जो ग्रीव है, उनका जो गर्दन है वो कैसे है? ऐसे मान लीजिए नीलमणियों से बना हुआ कोई दर्पण है। और उनके गले में एक माला थी गंड झलमल। झलमल क्या कर रहा था वहां पे? एक प्रफुल्ल कमल, कमलों का हार भी उनके गले में लटक रहा था। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु, तो पीछे से करते थे दर्शन। वहां एक गरुड़ स्तंभ है, तो गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर वो वहां से दूर से भगवान का दर्शन करते हैं। तो क्योंकि इस बार 15 दिन बीत चुके थे और चैतन्य महाप्रभु को भगवान जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ था, इसलिए वो इतने आतुर थे कि उन्होंने गरुड़ स्तंभ को पार करके वो सीधे भगवान के निकट आ गए दर्शन करने के लिए। वैसे बताया जाता है कि हमें भगवान का दर्शन बहुत निकट से नहीं करना चाहिए, ये एक विधि है, थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। और भगवान के पास में जब जाते हैं तो बहुत पास में नहीं जाना चाहिए, थोड़ी दूरी होनी चाहिए, और ऊंचे स्वर में, ऊंचे आवाज में भगवान के सामने नहीं बोलना चाहिए, सिवाय जब हम कीर्तन कर रहे होते हैं या जब कथा हो रही होती है माइक के ऊपर, वो भी चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए। फिर भी भगवान के सामने भी जब खड़े होते हैं, और विशेष रूप से जो भक्त भगवान के सिंहासन पर चढ़ के भगवान का श्रृंगार करते हैं, या जो भक्त भगवान की आरती उतारते हैं, उनको भोग अर्पण करते हैं इत्यादि, उनको तो ये विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि भगवान के सामने न तो हमें बहुत निकट जाके दंडवत प्रणाम करना चाहिए, न हमें जाके वहाँ बहुत निकट से ऊंची आवाज में बात करनी चाहिए। और जब हम बाहर से आते हैं तो थोड़ी दूर पर यहां खड़े होकर हम दर्शन करते हैं, परंतु महाप्रभु के हृदय में दर्शन करने की लालसा इतनी तीव्र हो गई थी कि वो बहुत निकट आ गए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान और गुरु दोनों के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत निकट जाने से क्या होता है, अति परिचयात अवज्ञा। इसलिए साधारण व्यक्ति के प्रति भी एक अपराध की भावना उत्पन्न हो सकती है, तो व्यक्ति की बात दूर रही, भगवान के प्रति भी ऐसे एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए दर्शन करते समय थोड़ा सा दूर, थोड़ी दूरी रखनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो विग्रह के, भगवान के विग्रह के निजी सेवक होते हैं और जो गुरु के सेवक होते हैं, उनको बहुत सावधान होना चाहिए ताकि वो लापरवाही का शिकार न बन पाए। तो फिर आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, बांधुली रूल जिनी अधर सुरंग ईशत हसित कांति अमृत तरंग। तो भगवान का जो हनुवटी थी उसका रंग कैसा था, उसका रंग, उसमें एक लालिमा थी, किस प्रकार की, बांधुली एक फूल का नाम है, उसका जैसे रंग होता है वैसे ही उनके हनुवटी का रंग था। और इससे क्या हो गया, हसित कांति अमृत तरंग, और उनके स्मित हास्य के द्वारा सौंदर्य उनके मुखारविंद का अनेक गुना बढ़ गया, और ऐसे लग रहा था कि अमृत के लहरें बह रही हैं उनके मुखारविंद से, और श्री चैतन्य महाप्रभु वह खड़े होकर इस अमृत का पान अपनी आंखों से कर रहे थे। हमारी जीवन की सफलता इसी में है कि हमारी दृष्टि भी इसी तरह से एक न एक दिन हो जाए। जब इतना लगाव हो जाए और जैसे हम देखें भगवान को, ऐसे प्रतीत हो कि अमृत की लहरें बह रही हैं, ये कोई भावुकता की बात नहीं है, ये वास्तव में आध्यात्मिक प्रगति का एक लक्षण है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी जब प्रवचन दे रहे थे या भक्तों से बात कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि भगवान के हाथ सब जगह हैं, उनके पैर सब जगह हैं इत्यादि, ताकि उनके भौतिक हाथ पैर नहीं हैं। तो एक भक्त ने उनसे पूछा कि प्रभु, श्रील प्रभुपाद, भगवान जगन्नाथ को हम कैसे समझें, उनके पैर तो दिखाई नहीं पड़ते, चरण दिखाई नहीं पड़ते, उनके हाथ भी कुछ विचित्र से लगते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे तुम्हें दिखाई पड़े वैसे ही देखो। कहने का तात्पर्य ये था कि जैसी तुम्हारी भक्ति में प्रगति होगी वैसे वैसे तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, तुम्हारा दर्शन बदलेगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते थे तो उन्हें साक्षात वृंदावन के श्याम सुंदर गोविंद, बांसुरी बजाने वाले मुरलीधर कृष्ण दिखाई पड़ते थे, जो त्रिभंग रूप में विराजमान होते थे, खड़े हुए होते थे। हम जैसे जगन्नाथ को देखते हैं वैसे महाप्रभु ने को नहीं दिखाई पड़ता था। जब महाप्रभु जगन्नाथ के सामने आते थे उनको श्याम सुंदर कृष्ण दिखाई पड़ते थे बांसुरी बजाते हुए, और भगवान जगन्नाथ तो है ही वैसे। भगवान जगन्नाथ आखिर कौन है, वो वही श्री कृष्ण हैं जो द्वारका में रहते हुए विरह की भावना का अनुभव कर रहे हैं। किन से विरह, वृंदावन और वृंदावन के भक्तों से विरह की भावना का अनुभव कर रहे होते हैं। तो खैर, यहां चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे हैं। श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षणे क्षणे, कोटि भक्त नेत्र भृंग कौरे मधुपाने। श्री मुख सुंदर कांति बाढ़े क्षणे क्षणे, तो भगवान जगन्नाथ के मुखारविंद की कांति प्रति क्षण बढ़ती गई बढ़ती गई। कोटि भक्त नेत्र भृंग कौरे मधुपाने, और जितने भी भक्त थे, सैकड़ों हजारों भक्त वहां पे एकत्र हुए थे, उनकी आंखें भंवरों के समान थीं और वो भगवान जगन्नाथ के सुंदर मुखारविंद के मधु का पान कर रहे थे। कौरे मधु पाने, मधु पान अर्थात उस मधु को पी रहे थे। कैसे पी रहे थे? उनकी आंखों से। देखिए, भक्ति में हम अनेक विचित्र बात सुनते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं कि हमें भगवान को जानना चाहिए, देखना चाहिए कानों से। श्रीमद् भागवत में ऐसे कहा गया है, श्रुतेक्षित, इक्षित मतलब देखना। कैसे देखना? कानों से देखना। अभी आप पूछेंगे, अरे ये कैसी विचित्र बात हो गई, हम तो आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, तो ऐसे क्यों बताया गया है कि हमें कानों से देखना चाहिए? इसका कारण ये है कि कानों से जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसे ज्ञान युक्त दृष्टि जो है हमारी, वो सही होगी, परिपूर्ण होगी। परंतु जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता है तो हमारी दृष्टि भी अपूर्ण हो जाती है, हमारी दृष्टि सही नहीं होती है। इसलिए ये पूछने के पहले कि हम भगवान को देखना चाहते हैं आँखों से, हमें भगवान को सबसे पहले कानों से देखना चाहिए, अर्थात भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जब सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब इस योग्य हो जाएंगे एक न एक दिन कि हम आमने सामने भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और भगवान बड़े कृपालु हैं, इसलिए अर्चा विग्रह के रूप में भी यहाँ पर प्रकट हुए हैं, ताकि हम अभ्यास कर सकें दर्शन करने का। और ज्ञान जब प्राप्त करते हैं तो समझ में आता है हमें कि भगवान का श्री विग्रह भगवान से अभिन्न है, भगवान और उनके विग्रह में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहां पर सारे भक्त क्या कर रहे हैं, हम लोग बैठ के भी सुन रहे हैं, भगवान को कानों से देख रहे हैं, और यहां पे इन श्लोकों में बताया गया है कि आंखों से पी रहे हैं। जबकि हम पीते हैं कुछ तो मुख से पीते हैं। तो कोई लोग बोलेंगे, आपके भक्ति की भाषा बड़ी विचित्र है, आप लोग कानों से देखते हो, आंखों से पीते हो, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे ही है आध्यात्मिक जगत में, हमारे आंखों के और कानों का महत्व ऐसे ही होता है। तो चैतन्य महाप्रभु के भक्त भगवान के सुंदर मुखारविंद के का दर्शन करते हुए बड़े आनंद का अनुभव कर रहे थे। जत पिय तो तृष्णा बाढ़े निरंतर, मुखाम भुज छाड़ी नेत्र न जाए अंतर। जत पिय, जितना भी वो इस मधु का पान कर रहे थे वो भक्त, तृष्णा बाढ़े निरंतर, उनकी प्यास बढ़ते जा रही थी। मुख अंबुज छाड़ी, भगवान का मुखारविंद छोड़कर नेत्र न जाए अंतर, उनकी आंखें किसी दूसरे स्थान में नहीं जा रही थी। दूसरे शब्दों में उनकी आंखें केंद्रित थीं पूरी तरह से भगवान जगन्नाथ के सुंदर मुखारविंद के ऊपर, और यहां वहां भी नहीं देखते थे। एई मत महाप्रभु लौन भक्त गण, मध्यान्ह पर्यंत कोइलो श्रीमुख दर्शन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने मध्यान्ह काल तक भगवान जगन्नाथ के सुंदर मुखारविंद का दर्शन किया। उनकी आंखें यहां वहां भटकी नहीं, और ऐसे उन्होंने नेत्रोत्सव, नेत्रों का उत्सव मनाया बड़े धूमधाम से। और उसके बाद फिर बहुत कीर्तन आदि भी किया भक्तों ने। वैसे उसके बाद वाले दिन भी, या उसके पहले दिन, भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को साथ में ले जाकर गुंडीचा मंदिर का मार्जन कराया। आप तो जानते हैं कि रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से बाहर आते हैं, रथ पे सवार हो जाते हैं, रथ चलती है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर में भगवान लगभग 9 दिन रहते हैं और फिर उल्टी रथ यात्रा होती है। तो ऐसे बताया जाता है कि भगवान जगन्नाथ का मंदिर ये नीलाचल है, द्वारका के समान है। और जहाँ 9 दिन भगवान जगन्नाथ रहते हैं रथ यात्रा के बाद, वो स्थान गुंडीचा मंदिर है सुंदराचल, वो वृंदावन के समान है। तो वहां पर जगन्नाथ वृंदावन में जाना चाहते हैं, द्वारका से वृंदावन। और इसलिए जब भक्त लोग भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ पे बिठाकर खींच रहे होते हैं, ये भाव इस प्रकार से है कि गोपियां श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वृंदावन खींच के ले जा रही हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का भाव भी ऐसे है, वृंदावन के विरह में वो स्थित होते हैं। जब द्वारका के निवासी सूर्य ग्रहण के समय पर कुरुक्षेत्र में गए थे तो देश भर से लोग वहां पर आए थे, वृंदावन से भी व्रजवासी गण आए थे। अनेक वर्षों के बाद वहां उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया और वो चाह रहे थे कि वापस श्री कृष्ण वृंदावन चले आएं। यहां जो श्री कृष्ण को देख रहे थे वो तो बड़े राजकुमार थे, बड़े ठाठ में थे, सोने का किरीट था, हाथी घोड़े और तरह तरह के, और एक राजकुमार का वेश वगैरह धारण किया हुआ था। परंतु वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण का किस वेश देखना चाहती थी, कौन सा वेश? एक ग्वाल बाल का वेश, जहाँ वृंदावन में रह के श्री कृष्ण बांसुरी बजाएंगे, गायों के साथ चलेंगे वन में, गायों को चराने के लिए ले जाएंगे, ऐसे श्री कृष्ण को ले जाना वो देखना चाहते थे। तो ये रथ यात्रा का भाव होता है। इसलिए गुंडीचा मंदिर वृंदावन के समान है, जगन्नाथ मंदिर द्वारका के समान है। तो नेत्रोत्सव जब हो जाता है उसके बाद वाले दिन रथ यात्रा होती है द्वितीया तिथि को, और उसके पहले वाले दिन गुंडीचा मार्जन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी वो जगन्नाथपुरी में रहते थे, अपने भक्तों को साथ में ले जाकर वो गुंडीचा मंदिर को साफ करते थे। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बड़े विस्तार में इस चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 11वें अध्याय में वर्णन किया है कि ये मार्जन का कार्य या ये सेवा किस प्रकार से आयोजित की जाती थी। चैतन्य महाप्रभु ने झाड़ू लगाया, भक्तों ने भी झाड़ू लगाया, फिर जल डाल दिया, जल के बाद भी झाड़ू लगाया और इसको बिल्कुल साफ कर दिया, ऐसे माने कि वो पत्थर नहीं मणियां हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि जब हम मंदिर का मार्जन करते हैं तो वास्तव में केवल मंदिर का मार्जन नहीं कर रहे होते हैं, हमारे हृदय का मार्जन हम करते हैं। तो यहाँ पर जो कई बार भक्त लोग आके सेवा करते हैं तो ये मत सोचिए कि ये साधारण कोई सेवा है, मंदिर साफ करने की सेवा, ये करके हमारा हृदय साफ हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि हमारे हृदय में झाड़ू मार रहे हैं हम, ऐसे कोई भौतिक झाड़ू नहीं है जो हमारे हृदय के अंदर जा सकता है, परंतु वे कोई झाड़ू लेकर भगवान के मंदिर का मार्जन करेंगे तो ये उपयुक्त झाड़ू है हमारे हृदय को साफ करने के लिए। तो सारे भक्तों ने जब ऐसे मंदिर मार्जन के सेवा में भाग लिया तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि हमारा चित्त पूरी तरह से शांत और मधुर और हर्षित हो गया है, शुद्ध हो गया है। तो ये है भगवत सेवा का चमत्कार। तो अब गुंडीचा मंदिर की तैयारी पूरी तरह से हो गई, अब गुंडीचा मंदिर जो है पूरी तरह से तैयार था भगवान जगन्नाथ का स्वागत करने के लिए। फिर नेत्रोत्सव, नेत्रोत्सव के बाद फिर रथ यात्रा का उत्सव मनाया गया और भगवान जगन्नाथ पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर। वहां भक्त दर्शन करने के लिए आ जाते हैं और फिर भगवान लौट के जगन्नाथ मंदिर में आ जाते हैं। और उसके बाद बीच में लक्ष्मी देवी थोड़ी अप्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि जब जगन्नाथ भगवान जाना चाहते हैं तो लक्ष्मी देवी पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं आप। भगवान को भी उत्तर देना पड़ता है कहाँ जा रहे हैं। बोला अभी आ रहा हूँ, बस दो दिन में आ रहा हूँ, अभी अभी आया, बस गया और आया। लक्ष्मी देवी को संशय तो होता है, ऐसे ही बात करते हैं सब लोग। तो भगवान जाते हैं, परंतु क्या करें, वृंदावन में गए हैं ना, तो वृंदावन के भक्तों का भाव ऐसे है, इतना मधुर है कि भगवान जगन्नाथ वहाँ भक्तों को छोड़ नहीं सकते। इसलिए और थोड़े दिन रह जाते हैं, और थोड़े दिन रह जाते हैं। और ऐसे पांचवें दिन जो है लक्ष्मी देवी अपने सेवकों को भेजती हैं कि जाओ उन्हें गिरफ्तार करके लेकर आ जाओ। ऐसे कैसे चले गए वो। तो इस तरह की लीलाएं जगन्नाथपुरी में होती हैं और किसी स्थान में नहीं होती हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर बहुत विशेष है। श्रील प्रभुपाद जी ने जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भगवान और उनसे संबंधित जितने भी उत्सव हैं उनको विश्व भर में मनाया और प्रसिद्ध कराया। इस तरह से जगन्नाथ देव की संस्कृति अब विश्व विख्यात हो गई है श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास और कृपा से। इसलिए हम लोग यहाँ बेलगाम में बैठ के भी आज भगवान जगन्नाथ की कथा कर रहे हैं। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन की जय, श्री नेत्रोत्सव की जय, श्री गुंडीचा मार्जन की जय, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न है क्या किसी के? हाँ
हरे कृष्णा महाराज जी।
हरे कृष्णा
महाराज जी, जब हम सपने में किसी महाराज जी को देखते हैं राधा के साथ, तो इसका मतलब क्या होता है?
कुछ नहीं होता है बस फिर से सो जाना, ठीक है और कोई प्रश्न? हाँ यहाँ एक प्रश्न इधर
हरे कृष्ण महाराज जी।
हरे कृष्ण
महाराज जी, भगवान के गुणों के बारे में श्रवण करना, क्या यही अधिकृत मार्ग है भगवान का दर्शन करने के लिए?
बिल्कुल बिल्कुल, श्रवण से ही हम योग्य हो जाते हैं दर्शन के लिए। समय से पहले केवल भगवान मुझे दर्शन दीजिए दर्शन दीजिए, ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं है। दर्शन की लालसा भले रखें मन में, परंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या कहा था कि हमें भगवान श्री कृष्ण की इतनी अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए कि भगवान हमें देखने के लिए आतुर हो जाएं, न कि हम भगवान को देखने के लिए आतुर हो जाएं। हम इतनी अच्छी तरह से सुने उनके बारे में और सेवा करें कि भगवान देखना चाहेंगे कि कौन सा है वो बेलगाम का भक्त जो इतनी अच्छी तरह से मेरी सेवा कर रहा है, कहाँ है वो, कहाँ है, देखो तो सही। तब हमारा जीवन सफल हो जाएगा, फिर दर्शन अपने समय में सही आ जाएगा। ठीक है।
हरे कृष्णा महाराज, ये जो आंखों से भगवान के रूप को पीना, बहुत अन्य जगह भी भगवतों में वर्णन है, तो इसका क्या मतलब है महाराज? क्या ये इंटेंसिटी का दर्शन, इतना इंटेंसिटी, और क्या इसके बारे में इसको हम समझ सकते हैं महाराज?
ये कहने का एक भाव है कि जो पहुंचे हुए भक्त होते हैं वो भगवान के सौंदर्य से बहुत ही आकर्षित हो चुके होते हैं, इसलिए जब वो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं तो उन्हें ये अमृत तुल्य लगता है और इसलिए वो इसका पान करते रहते हैं। कैसे? आंखों से। एक उपमा है ये, मानिए कि ऐसे एक मधु है या अमृत है जिसका वो अपने आंखों से पी रहे हैं, एक काव्यात्मक ढंग से कहने की बात है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।
हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हैं। धन्यवाद देंगे परम पूज्य भक्त रसामृत स्वामी महाराज जी को आज की सुंदर कथा के लिए। तीन बार जोर से हरि बोल कह के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो भक्त पहली बार यहाँ पे आए हैं उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। तो जो भक्त यहाँ पे पहली बार उपस्थित है उनसे निवेदन है, कृपया आप कुछ समय के लिए अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। कृपया संकोच ना करें, जो भक्त पहली बार इस मंदिर में आए हैं कृपया खड़े हो जाइए। हम प्रार्थना करते हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तथा गौर नितय से कि वे उनकी कृपा आप सबको प्रदान करें। साथ में यह भी आशा करते हैं आज का दिवस आपके उज्जवल भक्तिमय जीवन का शुभारंभ हो। आइए इन सभी नए भक्तों का भी हम पारंपरिक पद्धति से स्वागत करेंगे, तीन बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृपया बैठ जाइए। कल यहाँ पे नेत्रोत्सव मनाया जाएगा, जो यहाँ पे सुबह भागवत कथा होती है उसके पश्चात यानी के 9:15 बजे नेत्रोत्सव मंदिर में मनाया जाएगा। भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित रहे और जो भक्त भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए भोग लाना चाहते हैं तो कल सुबह 7 बजे से पहले भोग लेकर आए। उत्सव के पश्चात सबके लिए ब्रेकफास्ट प्रसाद की भी व्यवस्था मंदिर में होगी। मंगलवार यानी कि 20 जून को खानापुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जा रहा है जिसका समय है दोपहर 12 से 2 बजे तक। तो भक्तों से निवेदन है कि अधिक संख्या में आप खानापुर में 12 से पहले पहुंच जाइए। जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि आज प्रसादम के पश्चात मंदिर में सभी सत्संग सेवक तथा सत्संग सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में महाराज जी भी उपस्थित रहेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है जो भी सत्संग मंडल योजना से जुड़े हुए हैं, सेवक सेविका तथा सभी सदस्य आज इस मीटिंग में उपस्थित रहिए। यह मीटिंग इसी हॉल में यानी कि मंदिर के हॉल में पीछे की तरफ होगी और उसका समय रहेगा दोपहर 3 बजे। जैसे कि पिछले रविवार को भी हम आपको बताए थे कि हरे कृष्ण प्रचार केंद्र मुद्गा निर्जी की ओर से